हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नरजिस फातिमा मौजूद हैं, जो एनकोलॉजी और हेमाटोलॉजी में तहकीकी तजुर्बा भी रखती हैं, और इसके अलावा कैंसर के रिसर्च और उसकी रोकथाम के हवाले से भी उनके रिसर्च शामिल है। तो नरजिस, मैं SBS उर्दू में आपको खुशामदीद कहते हुए पहला सवाल तो यही पूछूंगा कि आपका खसूसी शोबा कैंसर के हवाले से कौन सा है?
मेरा कैंसर की रिसर्च मैंने स्टार्ट की थी ब्लड कैंसर की रिसर्च, उसके बाद आई मूव टू ब्रेस्ट कैंसर एंड करंटली आई एम वर्किंग ऑन पेनक्रियाटिक कैंसर। तो पिछले ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से आई एम वर्किंग इन ऑन्कोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी कैंसर ही ब्लड कैंसर की या ल्यूकीमिया रिलेटेड रिसर्च। तो मोस्टली अभी तक जितनी भी मेरी रिसर्च है वो टारगेटेड थेरेपीज या उन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट जिन पे कीमोथेरेपीज असर नहीं करती, उनके ट्रीटमेंट रिलेटेड और क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है।
सो जब आप टारगेटेड थेरेपीज की बात करती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी खास और मखसूस हालात में ऐसा मरीज आप इंतखाब करती हैं जिसके लिए आप खसूसी टेलर्ड किस्म के थेरेपीज बनाती हैं?
ये ठीक बात है बिल्कुल। तो टारगेटेड थेरेपीज में ये होता है इन फ्यूचर जो है सम क्लिनिशियंस एंड सर्जन्स आर वर्किंग ऑन इट एज वेल। प्रिसिशन मेडिसिन इसको कहते हैं कि इन द फ्यूचर ऐसा होगा कि हर पेशेंट के पास अपना जेनेटिक कोड होगा और उसके थ्रू उसको उसका ट्रीटमेंट मैकेनिज्म उसको सप्लाई किया जाएगा, उसको दिया जाएगा।
ये तो फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब
लेकिन इट्स नॉट लाइक के इन द वेरी फार फ्यूचर, हम सब उस पर काम कर रहे हैं। तो जब टारगेटेड थेरेपी की बात होती है वो इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल, लेकिन डिफरेंट कैंसर्स में कुछ डिफरेंट टारगेट्स होते हैं वो जिनकी म्यूटेशन ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर कैंसर्स। तो अगर आप उन कैंसर्स को जब कीमोथेरेपी देते हैं तो थोड़े टाइम तक कीमोथेरेपी काम करती है, उसके बाद अगर वो सेल्स उस कीमोथेरेपी पे ट्रीटमेंट उन पर इफेक्टिव नहीं हो रहा तो कोई जीन होती है जो सेल्स को इन अदर वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल अपोप्टोसिस या सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन अगर काम नहीं कर रही है बिकॉज क्योंकि वो कीमोथेरेपी उस पर इफेक्टिव नहीं है, तो फिर हम टेलर टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। और वो टारगेटेड थेरेपीज देर आर टू मेन रीजन्स उन पेशेंट्स पे जिन पे कीमोथेरेपीज इफेक्टिव नहीं है उनको भी दी जा सकती हैं, और कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनका कैंसर तो सेम होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट म्यूटेशंस की वजह से वो कैंसर एक डिफरेंट काइंड का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे टाइम जब कोविड आया था लाइक द पेंडेमिक, एट दैट टाइम उसके डिफरेंट वेरियंट्स थे। इसी तरह कैंसर्स में भी कुछ डिफरेंट वेरियंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सोमैटिक या जेनेटिक म्यूटेशंस। तो उन स्पेसिफिक पेशेंट्स को टारगेट करने के लिए फिर हम टारगेटेड थेरेपीज डिवेलप करते हैं, और इस पर काफ़ी सालों से काम हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अमेरिका में बहुत सारे कैंसर्स जिनको पहले लोग समझते थे कि इट्स काइंड ऑफ इनक्योरेबल, लाइक ल्यूकीमिया स्पेसिफिकली, ब्लड कैंसर के और एक्यूट लिम्फोसाइटिक और क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, मगर इन रिसर्च की वजह से जो पहले सर्वाइवल टाइम अगर 5 ईयर्स था तो नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 10 or 15 ईयर्स। तो काफ़ी रिसर्च की वजह से एंड आफ्टर दैट जो भी नई थेरेपीज और ड्रग्स आ रही हैं मार्केट में दे आर क्वाइट इफेक्टिव, एंड प्लस बहुत सारे प्रिवेंशन और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स या अर्ली डायग्नोसिस और इनसाइड अवेयरनेस की वजह से काफ़ी कैंसर लैंडस्केप में चेंज आ रहा है स्पेशली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड।
इसी चेंज की हम बात करना चाह रहे हैं कि ख़ास तौर पे जनूबी एशिया से आने वाले माइग्रेंट या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कैंसर के लफ्ज़ को एक बहुत ही खौफनाक मर्ज समझा जाता है, यानी जानलेवा। उसमें बहुत जाहिर है बहुत हद तक हकीकत भी होगी, लेकिन कैंसर क्या वाकई बिल्कुल ही नाकाबिले इलाज मर्ज है? यानी जो जिसको ये हो जाए फिर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट कितना बदला है?
आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ मच नॉलेज यू हैव। तो कैंसर लाइलाज नहीं है, मगर किस टाइम कैंसर डिस्कवर हुआ ये इम्पोर्टेंस रखता है। बहुत सारे कैंसर्स अगर अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोस हो जाएं तो कम्प्लीटली क्योरेबल कैंसर्स भी हैं, لیٹ اسٹیجز پہ بھی کینسرز اگر ڈائگنوز ہوں اور پیشنٹ کو پتہ ہو کہ کس کون کون سی چیزیں ہیں جو انہوں نے غلط کی تھیں یا کون سی چیزیں جن پہ اگر وہ ناؤ اف دے ول ورک آن اٹ ادر دین تھراپیز. فار ایگزامپل بہت ساری میرے اپنی ایگزامپلز میں میرے اپنے ہی سرکل میں یہ کیس تھا کہ دیر واز اے لیوکیمیا کیس ویئر اٹ واز ایون میٹاسٹسائز ٹو بون مگر اسپیسیفک ٹارگیٹڈ تھراپی نے اس پہ افیکٹ کیا اینڈ فرام اسٹیج فور اسٹیج تھری اٹ وینٹ لائک ٹو کمپلیٹلی کیورڈ. مگر اس میں پیشنٹ کا اپنا بھی بہت سپورٹ تھا, دے وار ویری مچ اویئر اباؤٹ واٹ دا ٹریٹمنٹس وی آر گیونگ ٹو دیم پلس ایکسرسائز اور دوسری چیزوں کا انہوں نے بہت خیال رکھا تھا.
از دیر اینی تھنگ لائک ول پاور پلیز اے وائٹل رول ہیئر؟
ڈیفینیٹلی. تو ول پاور کو سائنٹیفک ٹرمس میں پرابلی ہم امیون سسٹم کہہ سکتے ہیں, اینڈ جتنا آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا اتنا آپ کینسر سیلس کو زیادہ اچھے سے کل کر سکتے ہیں. اینڈ بیسکلی یہی ون آف دا تھراپیز دیٹ وی ورک آن از آر امیونو تھراپیز. ایون کیمیو تھراپیز میں بھی اگر آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے تو آپ پہ بہت زیادہ اچھا افیکٹ ہوتا ہے. اسی لیے دیر از اے تھنگ کال ایچ ڈی آئی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, تو وہ ہائر ویسٹرن کنٹریز میں لائف اسٹائل ڈائٹ اور ان چیزوں کی وجہ سے ہائر ہے. اسی لیے اگر ہم ایج بھی دیکھیں تو ایوریج ایج آسٹریلیا امیریکا کینیڈا ایکسیٹرا میں زیادہ ہے کمپیئر ٹو ساؤتھ ایشیا, اینڈ ڈائٹ اینڈ لائف اسٹائل از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان اٹ.
یہ ہیں ڈاکٹر نرجس فاطمہ جو کینسر کی ریسرچر ہیں اور کینسر اور اس سے حفاظت کے بارے میں بات چیت کا دوسرا حصہ اس سلسلے کے اگلے پوڈ کاسٹ میں شامل کریں گے.
آسٹریلیا میں اپنی کمیونٹی کی سرگرمیوں کے ساتھ خبروں, حالات حاضرہ اور بے لاکھ تبصروں کے لیے یہ SBS اردو ہے, SBS ساؤتھ ایشین پر.